गोपियों का प्रेम किसको कहते हैं? गोपियों का प्रेम ही काम है।
प्रेमैव गोपो रामानां कामैत्र गमत्
पारामानां
कामैत्र गमत् कथम इत्युद्धावृतं वाञ्छितं।
इसलिए उनके अतिरिक्त ये दूसरे किसी पर भी लागू नहीं होगा। साधकों की तो बात ही क्या, सिद्धों पर भी लागू नहीं होगा। इसलिए जब साधकों के हम के अंदर में जो भक्ति इसी का हम महिमा वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो उन गोपियों की महिमा का हम क्या वर्णन करें। यदि कहो स्त्री जाति, स्त्री जाति का पतियों को प्रत्याग करना वेद विरुद्ध कार्य है। वेदों में ऐसा ही लिखा गया, इसी का नाम सदाचार है स्त्री के लिए, और पति के लिए स्त्री को त्याग करना असदाचार है। तो यहां पर स्त्री जाति के लिए पति या आर्य पथ को, इसी को आर्य पथ भी कहते हैं, प्रत्याग करना वेद विरुद्ध है। इसलिए सज्जन गण, पूज्यपाद बड़ सुंदरियों के लिए हमारे सनातन गोस्वामी ने पूज्यपाद ब्रजगोपिया, सज्जन लोग पूज्यपाद बड़ सुंदरियों के ऐसे आचरण ये कैसे शिष्ट हो सकते हैं। गोपियों ने जो आर्य पद छोड़ दिया, लोक लज्जा धैर्य सब कुछ छोड़ दिया, पति कार्य कम कहां जा रही है, कोई उत्तर नहीं, सरपट चल रहे हैं, लोग निंदा कर रहे हैं, निंदा उनके कानों में प्रवेश नहीं करता है, उनके लिए वो कुंडल बन गया। जो कुछ बकते हैं तो बकने दो, छोड़कर के चली गई। इसलिए कहे मुकुंद पदवी सुत भी प्रवेश किया, श्रुति सब भी आज भी मुकुंद जी की उस पदवी को अनुसंधान कर रही है गोपियों जैसा भाव लाने के लिए, उस भाव से भजन करने के लिए। सदाचार को छोड़ना, किंतु श्रुतिया कभी नहीं छोड़ सकती। श्रुति में तो यही चीज है, मर्यादा को श्रुतिया ठीक रखती है, मर्यादा के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, सब कुछ माफ कह करके सदाचार के सांचे में डाल करके पकड़ेंगे। कोई भी ऐसा वेद में नहीं देखा जाएगा जो सदाचार का विरोधी हो। इसलिए वेदों में गोपियों के भजन की बात कहीं नहीं आई। उपनिषदों में भी कहीं, उपनिषद ही तो वेद है, इसलिए वो लोग खोज रहे हैं उपनिषद इत्यादि, उसमें खोजने की बात। और श्रीमद् भागवत में वो चीजें एकदम परिपूर्ण रूप में है। क्योंकि वेदों की साध्य वस्तु है मुकुंद पदवी, वेद भी अन्वेषण करते हैं कैसे भगवान के प्रति यह प्रेम हो, गोपी प्रेम हो, इसलिए उसमें वर्णन नहीं किया गया। और कहते हैं कि आज तक वो लोग पाई नहीं, श्रुतियां मंत्र, श्रुति के मंत्र जो है वो नहीं पाए। अच्छा, भागवत के मंत्र उनको पाए हैं कि नहीं, भागवत के श्लोकों को भी मंत्र कहते हैं, ये लोग पाए हैं कि नहीं, उन्होंने पा लिया है, किंतु वो वेद के जितने मंत्र हैं कोई नहीं पाया। वेद के मंत्र में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है गायत्री, वेद सबसे श्रेष्ठ मंत्र है गायत्री। गायत्री जी तपस्या करते 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 तपस्या करते करते जब उनको प्रेम की प्राप्ति कुछ होने लगी, तो वो काम गायत्री के रूप में बदलेंगी, उनका शरीर और ढांचा और सब कुछ अंतर बाहर सब परिवर्तन हो जाएगा, तब फिर वो काम गायत्री होकर के तब फिर कृष्ण को पाएंगे। इसलिए कहते हैं आज तक प्राप्त नहीं हुई, अतएव कज क्यों नहीं पाई। अरे वेदों से श्रेष्ठ है, वेदों की तो प्रतिपाद्य जो है वो लक्ष्मी जी है, और लक्ष्मी जी को ही नहीं मिले वो प्रेम, आज वो भी वेद वन में तपस्या कर रही है, तो फिर उनसे निकृष्ट वाली ये वेद श्रुतियां क्या पाएंगी उनको, इसलिए नहीं पाए। इसलिए जो कहते हैं वो ठीक नहीं, जो उन्होंने पा लिया। इसलिए धर्म ज्ञान उपदेश को वेद आदि को दुर्लभत्व वस्तु लाभ करवार जन्म पति पुत्र इत्यादि आज पर कठिनता प्रत्याग करवा कौन हानि वस कहते हैं कि इसलिए वेद में धर्म लज्जा सदाचार और ज्ञान का उपदेश ही सार बस यही था। एक हरिनाम के महात्मा ने हमारे रूप को सामने पहला श्लोक लिखा है
तुंडे तांडव
निखिल सुति मौली रत्नमाला
ज्योति
निराधिक पाद पंकजांत अय मुक्त कुलई रूपाश्यमानम परितस्त्वां
हरिनाम संशयामि
संशया। कहते हैं कि निखिल सुति मौली रत्नमाला ज्योति निराजित पाद पंकजांत हे नामदेव आपके जो चरण कमल हैं निखिल वेद श्रुति शास्त्र जितने हैं अत्यंत दमकते हुए अपनी कांति के से और उनकी आपके चरण कमलों की आरती उतारते हैं नख की द्युति की आरती उतारते हैं। मतलब क्या नाम की जो महिमा है और उन नामों में जो कृष्ण नाम गोविंद नाम राधा कांति इत्यादि नाम वेद शास्त्र के जितने उपदेश हैं उनको द्युति मान लो चमकती हुई रत्न है और उसके साथ में नाम की आरती उतारते हैं अर्थात आरती उतारते हैं उनकी महिमा को वो जानते नहीं है ना उसमें वर्णन किया गया है इसलिए वो लोग पाने की चेष्टा करते उसमें बस यही कहा गया कि जानंत अश्य वेदों में कुछ नाम की महिमा बहुत थोड़ी रूप में है अधिक नहीं है इसलिए कहते हैं इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वेद जो है अधिक शब्द मुक्ति की बात कहेंगे मुक्ति तो भगवान के चरण कमलों तक नहीं पहुंचती इसलिए बहुत दूर से अपनी कांति अर्थात उपदेशों से नाम की महिमा को की आरती पहुंच नहीं पाते वेदों ने पति पुत्र का प्रत्याग नहीं किया है भगवान की सेवा के क्यों वो कहते हैं पतियों की सेवा करना स्त्रियों के लिए परम धर्म है पुत्र का कर्तव्य है पिता की सेवा करें वेदों में ही तो ये शायद है पिता धर्मम
पिता सर्ग पिता धर्म
पिता स्वर्गम पिता
धर्म पित ही परमंतप पितरी विद्यमा बनने प्रियंती सर्व
ये वेद की ही बात है पिता ही स्वर्ग है पिता ही धर्म है पिता की को प्रसन्न करने से सब कुछ प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए पिता की सेवा करने से अब माता के लिए कहा गया क्या
जननी जन्मभूमिश्च
स्वर्गादपि गरीयसी रामायण में उन्होंने दिखलाया कि रामचंद्र अयोध्या की मिट्टी लंका तक ले गए थे देखा ना किंतु हमने वाल्मीकि रामायण में या किसी रामायण में हमने नहीं देखा ये सब मातृभूमि के लिए एक राष्ट्रीय राष्ट्र के प्रति भक्ति दिखला रहे हैं। अच्छा फिर उसी बेटा का जन्म यदि कहीं ईरान में हो जाए पाकिस्तान में हो जाए तो तब फिर जन्मभूमि उनकी बदल जाएगी इसलिए ये सब चीजें ठीक नहीं हमारी जन्मभूमि मान लिया गया तो गोलोक ही है पिता भी मान लिया जाए तो कृष्ण माता तो मान लिया जाए तो वहीं पर कृष्ण जो कुछ भी मानना है वहीं पर मान ले वेद ऐसा नहीं करेंगे इसलिए वेद लोग वेद स्त्री को छोड़ने का आदेश नहीं देता इसलिए वेद यदि पुल्लिंग भी है तो नहीं छोड़ता यदि वेद की श्रुतियों श्रुति मान लिया जाए तो सुस्ति स्त्रीलिंग वो भी अपने पति को नहीं छोड़ता इसलिए ये लोग ऐसा नहीं कर सकते विशेषत स्वजन आदि अपेक्षा मुकुंद भजना ना करिले उक्त श्रुति वाक्य सहित विरोध है। यदि कोई मुकुंद का भजन नहीं करता यदि सूती कहती है पति की सेवा कर और कोई पति की सेवा छोड़ करके भगवान की सेवा करता है तो विरोध हुआ ना, इसलिए उसके साथ में विरोध। कोई कहता है सत्यम भग सच गो और वहां पर हमारे वसुदेव जी यदि सच नहीं बोलते हैं तो वेद के साथ में विरोध होता है, इसलिए दशरथ इत्यादि श्रुतियों के अनुसार में चले किंतु वसुदेव जी श्रुतियों के अनुसार नहीं चले उसका विरोध किया, किंतु भय जग मंगलकारी वो मंगलकारी है, ये भक्ति का पथ है। तो भक्ति का पथ ही ऐसा है, इसलिए गीता में भगवान ने कहा है स्वयं त्रैगुण्य विषया वेदा न त्रैगुण्यो भावार्जुन, इसलिए तुम भी अर्जुन ये वेद की वाणियों को गीता में कहा ऐसे वाणियों को छोड़ करके निस्त्रगुण वर्त पिता माता की सेवा करना और ये सब तो है त्रिगुण के विषय में और उससे ब्रह्मांड के अंतर्गत भी ही चीजें पाए जाएंगी, क्षणिक पाए जाएंगे, नित्य सुख नहीं होगा। यदि भगवान को पाना है तो न धर्मम ना धर्मम श्रुति गुण निरुक्त, भगवान के प्रति तन मन वचन सब प्रकार से सेवा करना ही हमारा परम कार्य है। और भी अनंत कथा रसस्य किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य, अरे इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पद है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का लाखों जन्म हमारा ब्रह्मा जी का जन्म हो और अनंत कथा अनंत की कथा में रस नहीं है तो रुचि नहीं है तो ये बेकार है ब्रह्म जन्म, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से श्रुतियां ही तो निकलती हैं, भगवत भजन की उसमें क्या ऐसी बात है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म जन्म से हमारा कोई भी लाभ नहीं है। और भी कह रहे हैं यहां पर जातुस्वजम आद्य प्रथम च हित्वा, हित्वा माने
छोड़कर
निश तक इसको छोड़कर निरपेक्ष हुए हैं अकिंचन हुए हैं, जब तक ये ऐसा परम निरपेक्ष नहीं होगा भगवान की वैसी भक्ति ब्रज की भक्ति कभी नहीं पाई जा सकती, किंतु इसको भी छोड़ दिया उसको भी नहीं किया तो दोनों से गए, ऐसा नहीं हो। जब तक इधर में ना हो जाए तब तक उसको भाई मत छोड़, जब उधर में हो जाएगा तब छोड़। आज माने अब इस श्लोक में भी भगवान के चरण कमलों की लाभ की आशा में, प्रथमतः आशा नहीं है सब चीजों को छोड़ देना चाहिए, यदि आशा है सब चीजों से निरपेक्ष होकर के भगवान का भजन करना पड़ेगा। यदि समस्त विश्व एकत्रित होकर के कहता है कि तुम ऐसा मत करो भगवान का ऐसा भजन मत करो तो भी हम करेंगे, ऐसी भावना होनी चाहिए। अथवा यदि कहो ब्रह्मादि सर्वज्ञ गण के भी ज्ञान प्रदत्त होने के वजह से पूज्यतम श्रुतियां ब्रह्मा इत्यादि की भी पूज्य है इसलिए वो सबसे उत्कृष्ट हैं, तो भी कह रहे हैं श्रुति भी ब्रह्मज्ञम, श्रुतियां भी आज तक भी खोज करके नहीं पाए और की तो बात क्या श्रुतियां, श्रुतियों में धर्म इत्यादि का वर्णन देखा जाता है और उसमें धर्म सदाचार इत्यादि की बातें वहीं पर वहीं तक उनकी शिक्षा है। भगवत भजन में विशेष करके गोपियों की भक्ति का वर्णन कहीं नहीं मिलता, जैसे कि भागवत इत्यादि में हमारे गोस्वामियों के ग्रंथों में वैष्णव दोनियों ने सबका प्रत्याग करके एकमात्र कृष्ण का आश्रय लिया था। ऐसा भाव श्रुतियों के लिए अन्वेषणीय है, अर्थात श्रुतियों में कहीं भी इस सब का वर्णन नहीं है, न श्रुतियों ने इसके लिए किया है। ये लोग गोपियों ने इसको सम्यक रूप से इस भाव को प्राप्त किया है। इस प्रकार से कोई कोई कहा करते हैं उपनिषदों की भगवत भजन विशेष विशेष लोकेन गोप्यो बहु, गोपियां अत्यंत श्रुति के मंत्र सा श्रुतियां सुन करके कृष्ण लीलाओं को और उनको लोभ हुआ और तब वो लोग तपस्या करके और कृष्ण के पदवी को लाभ किया, ये कुछ लोग कहा करते हैं। इसलिए यह बात भी जो उपनिषद गण गोपियों के भजन विशेष के लोग से वृंदावन में गोपी हुए हैं वो भी निरस्त हुआ, तथापि निरस्तम ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जब इसको लाभ नहीं कर सकी तो उनसे निम्न रहने वाली ये उस दुर्लभ वस्तु को ये कैसे पा लिया श्रुतियां, ये संभव नहीं। लक्ष्मी होने से भी जब उनको कभी सौभाग्य नहीं मिलता तो इनको कैसे मिल जाएगा, इसलिए संभव नहीं। तब केवल भगवत कारण में प्रभाव है संभव। तब यदि कहीं कोई महान भाव ऐसा कह रहे हैं जैसे कि हमारे रूप गोस्वामी ने कहा है ये श्रुति चरी और उपनिषद चरी ये एक ही ना, ये लोग उनको पाए हैं तो ठीक है, ये भगवान की करुणा से पाए हैं, ऐसे इनको नहीं मिला, यदि मिले भी गए तो वैसा ही होगा। इसलिए गोपियां सबसे श्रेष्ठ है। आदि पुराण में कुछ ऐसा लिखा गया है गोपी भावे नमामे एवजे भक्ता समुपासते तेसु पाश्वेव तुष्टो अपि सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। आदि पुराण में यह कहा गया है गोपी भावे नमामे एवजे भक्ता समुपासते, जो लोग गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं मैं उनके प्रति गोपियों की तरह मैं प्रसन्न होता हूं, यह मैं सत्य 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 कहा गोपियों के समान उन पर प्रसन्न होता है। यह उपासना व्यापार बहुत ही दुर्लभ है। भागवत में श्रुति स्तव में ऐसा दिया गया 87 अध्याय में स्त्रिय उरुगेंद्र भोग, इस श्लोक की टीका में हमारे जी गोस्वामी सनातन गोस्वामी विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर जी ने उसकी उसका अर्थ किया है। श्रुतिगण कह रही है हे भगवान ब्रज नारीगण तुम्हारे प्रति भुजग सदृश भुज दंड का सौंदर्य और उसमें विष लगा हुआ उग्र विष, जैसे सांप किसी को काट दे उसका विष उतरे नहीं और उसमें वो व्याप्त हो जाए विष, ऐसे भुजग इंद्र के समान कृष्ण का जो भुजा है उसकी उग्र विष से कोई मोहित होकर के बहुत से स्तुतियां आपके चरण कमलों को प्राप्त किया है। कभी सौभाग्य होगा उन लोगों का कहीं सुना या कहीं भगवान के कृपा से देखने को ऐसा मिला होगा, इसलिए भगवान के भुजाओं को जो लंबी भुजाएं हैं वो कैसी हैं, सर्पाकृति के समान ऊपर से नीचे तक बड़े ही सौरभ युक्त हैं। गोपियों को स्पर्श किया होगा उसको देख करके इन लोगों को लोभ हो गया और उसी को पाने के लिए जैसे कि कल हमने परसों बतलाया था जो श्री का भी सौभाग्य नहीं हुआ गोपियों को राष्ट्र स्थली में कृष्ण अपने भुजाओं से आलिंगन करके और उनको प्राप्त किया। इसलिए कृष्ण इस भाव को देख करके, गोपियों के इस भाव को देख करके श्रुतियों में कुछ लालसा जगी और तब उन्होंने भगवान की बहुत दिनों तक, लाखों कल्पों तक उनकी आराधना की। गोपाल मंत्र और काम गायत्री इन दोनों के माध्यम से करने पर भगवान ने इनको दर्शन दिए। तब ये प्रार्थना कर रही है, कंदर्प कोटि लावण्य त्वयि दृष्टे मनांसिनः कामिनी भावा आशाद्य स्मर क्षुब्धा न असंशयम्। हे कृष्ण, कंदर्प कोटि लावण्य विजयी, तुम्हारे अपूर्व श्री मूर्ति को दर्शन करके आज हम पुरुष होने पर भी हम स्त्री के भाव से आपको पाना चाहते हैं। अतः गोकुलवासिनी गोपियों, गोपियां जिस प्रकार से तुम्हें जिस बुद्धि से पाया काम तत्व के द्वारा, हम भी आपको उसी तत्व के द्वारा तीव्र वासना रखती हैं पाने के लिए। भगवान ने उनको उत्तर दिया, दुर्लभो दुर्घटाश्चैव जुष्माकं सुमनोरथ मयि अनुमोदितः सम्यक् सो अपि आदिर्भवतु। हे श्रुतियां, मैं तुम्हारे, ये तुम्हारा मनोरथ बहुत उत्तम है किंतु व्यापार अत्यंत दुर्लभ और दुर्घट है, तबे अमार अनुमोदन, हमारा इसमें अनुमोदन है तुम्हारे इसकी भाव की सिद्धि हो। अब इसके लिए यदि कृष्ण इतना का भाव की सिद्धि हो तब फिर गोकुल में जन्म इनका और तब उनके सिद्धा गोपियों के संग से इनका मनोरथ पूर्ण हो सकता है। उक्त प्रमाण गोपी अनुगत्य ही सिद्ध होगा, इसलिए यदि वो सिद्ध होगा तो गोपियों के अनुगत्य में ही ये सिद्ध होगा। इसलिए पूज्य पाठिका का सनातन गोस्वामी यहाँ पर स्वयं स्थितियों के लिए ये सौभाग्य संभव नहीं, कृष्ण की कृपा हो, उनके अनुगामियों की कृपा हो तो ऐसा संभव हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है, ये भक्ता गोपी भावेन माम एव ये भक्ता, भक्ता पुल्लिंग शब्द है। तो कहते हैं कि यदि इसके द्वारा पुल्लिंग के निर्देश होने से पुरुषों में भी यदि ऐसी भावना हो तो भी ये भावना होने पर उसकी सिद्धि होगी। इसलिए गोपियों के भाव का उद्गमन वो कर सकता है जैसे चैतन्य महाप्रभु उनके परिक्रमा ने किया। इसलिए ऐसे लोग भी उसके, जिसके अंदर में ऐसा लोग हो वो लोग भी इसके अधिकारी हैं। इसलिए यदि ऐसा हो तो गोपियों के अनुगत्य में ये सब मनोरथों की पूर्ति होगी।
राघो शरण अभी तो जीवन
Thank you. I'm not.